किसी के चरणों में जाकर के और अपने को समर्पित कर देते हैं, वहां कोई भाव नहीं है, वहां कोई भाव
Thank you.
प्रकाशित व्यवस्थित ये क्या है उपस्थिति ही जिसकी परिवर्तन करने में सहयोग है वो गुरु जी हैं जिनके भीतर जाकर के गंगा और माता को पूजना ठक्कर करना पड़ता है हमारे चित्र ऐसे भी हो सकते हैं लेकिन मैं उनकी बात नहीं करता जिनकी उपस्थिति परिवर्तित कर दे वो ही वास्तव में गुरु हैं आप इस बात को निश्चित करिएगा पूरे मेरे इस दौरान मैं आपसे कभी भी किसी बात के त्याग करने के लिए नहीं करूंगा ये आपकी जिम्मेदारी है अगर आप गैर जिम्मेदार हैं तो मुझे आपसे कोई देना देना नहीं आपके चरित्र के मामले में मैं बिल्कुल इंटरफेयर नहीं करूंगा लेकिन इसका मायने यह नहीं है कि आप उसका दुरुपयोग करें मैं कभी किसी को नहीं पूछता कि आप क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं क्या खाते हैं क्या नहीं खाते हैं पर इन बातों पर ग्रास रखने से पहले इतना जरूर देख लेना कि ये दिन भर तपस्या में संयोग होगा मेरे ध्यान इन बातों पर ग्रास रखने लायक है कि नहीं कहीं वसने के मुक्त हाथ से इन बातों पर नहीं
कि मुझसे बड़ा कोई देश विद्या में निष्णात
सकती नहीं है। पहले असंभव से कर गया कि इतना बड़ा अच्छा कलाकार और इतने अहंकार से प्रेषित हो गया कि नहीं सबसे बड़ा यह विद्या में विश्वास है। क्या किया गया उसको? उसने कहा सुनो, वो भी मेरा पहले प्यार कर है, उस पहले से पूरी बात करो, फिर खाना ज्ञान पकड़ते करते सैनिक के पास। राजा के मन में ये कहा कि मैं सबसे बड़ा उम्मीदवार हूं, तो मैं आपको आपके पास छोड़ दूँ। उस सैनिक ने कहा कि शायद इसलिए बोलना होगा कि मैं परिचित हूं, तो एक बहुत अच्छे धन घर से आप उसके पास चले जाइएगा, ये ठीक है। आपको बचने को उससे कंपेयर कर लीजिए, अगर आप बड़े हो तो राजा के पास आके कह दीजिए। जंगल में वो रहता था, गया वहां पर तो देखा कि अभी तो मुझमें कमी है, इसके पास मुझसे ज्यादा विद्वान है। सीखना शुरू कर लिया, सिर्फ इसलिए सीखना शुरू कर लिया था कि मैं उससे बड़ा हो जाऊंगा। प्रॉब्लम यहीं से क्रिएट होती है।
जो लोग पैदा हुआ था यह ज्यादा प्रचलित है। तो गुरु भी ब्रह्मा, गुरु भी गुण और गुरु भी महेश है, संकर है, समझ में नहीं आता मेरे तो आपको आया होगा समझ में। एक व्यक्ति तीन दिन नहीं हो सकता, समझने की कोशिश करें तो बात समझ में आ ही सकती है। तो गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु विष्णु है, गुरु ब्रह्मा का काम क्या है? लोग ने कहा जाता है कि ब्रह्मा शक्ति जो त्रिदेवता है, हमारी एक शक्ति है और शक्ति के कोई सृजन करने वाला भी हमारा कोई ब्रह्मा है, लेकिन उस ब्रह्मा की तरह हमारी किसी की दृष्टि नहीं जाती है। आप इस संसार में जन्म लिए और संसार में रहने वाले लोग इस स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, इस पर्याय से दूसरी पर्याय में जाते हैं, एक जन्म से दूसरा जन्म धारण करते हैं, ये आपकी शक्ति का एक कण जो चल रहा है, इसका निर्माता कौन है आपका? क्या आप नहीं जानते? जानते हैं। इसके निर्माता आप स्वयं हैं, इसके निर्माता आप स्वयं हैं। आप अपना अच्छा, अपना बुरा, अपना संसार, अपना मोक्ष, अपना स्वर्ग, अपना नरक हम सब निर्मित करते हैं। इसलिए कहा जाए तो हम भी अपनी सृष्टि के सृजनहार हम ही स्वयं बनना है। हम जो बनना चाहें वो हम अपने आप को बनकर बना सकते हैं। ऐसे ही विष्णु भी हानि हो सकते हैं, निरंतर करते हैं। विष्णु का काम संरक्षण का है, विष्णु का काम सुरक्षण का है। संसार में जो असुरक्षित, संसार के परिक्रमा को जो असुरक्षित रहे हैं, उनके लिए सुरक्षा देना, एक संगम देना, उनके लिए अपना निश्चित निर्णय एक स्थान दे देना जहां रहकर के भी आनंद से रह सकें, तो वो नहीं दे सकते हैं। क्या हम अपनी आत्मा की रक्षा क्यों नहीं कर सकते? हम तो करेंगे। कोई लोकांत से उतरते कोई परमात्मा है नहीं आएगा हमारी रक्षा करने के लिए। इस भूमि में मत रहना, इस धरती में मत रहना। संसार में बहुत बहुत देवता धरती पर उतरते होंगे और देखा होगा लोगों ने, लेकिन आज तक किसी का किसी ने संरक्षण नहीं किया। हमारा विष्णु जो हमारे भीतर बैठा होता है वही हमारा संरक्षण करता है, वो संरक्षक है। अर्थात हमें चतुर्वती संसार के परिवहन से बचा देता है। कहते हैं कि ये गलत है, ये मिथ्या है, इसे नहीं करना चाहिए, ऐसा करने से दुख होगा, ऐसा करने से हमारा अलग हो जाएगा। ये कौन बताता है? हमारे भीतर बैठा हुआ विष्णु को बता रहा है, हमारी आत्मा ही तो विष्णु है। और शंकर, शंकर को कहा गया है इस लोक में कि वो संहार करते हैं। जैसे हमारे दिन सहस नाम सूत्र के अनुसार तो शंकर का तो सम सुखम करो कि शंकर है, ऐसा है कि जो सुख करे उसका नाम शंकर। लेकिन लोग ने जिसकी व्याख्या हुई कि शंकर अपना संहार करने वाला किसका संहार करता है? जो बकरी लोग पैदा हो जाते हैं, जो आतंक पैदा करने वाले आतंकी हो जाते हैं, ऐसे लोगों का संहार करने वाला शंकर होता है। हमारे भीतर में भी इस तरह के आतंक को फैलाने वाले, इस तरह के उपद्रव को फैलाने वाले, पापा चरण को फैलाने वाले भगत सिंह हमारे अंदर जीवित हैं। उन अपने दुराचरण को, उन अपनी दूसरे प्रवृत्तियों को यदि कोई हटा सकता है, उन प्रवृत्तियों का कोई संहार कर सकता है, तो कौन करेगा? हम ही ना करेंगे अपनी दुष्ट प्रवृत्तियों का संहार, उनका विनाश, उनको हटाना, दूर करना। इसलिए हम क्या हैं? शंकर हैं। इसी तरह गुरु के लिए तीन रूपों में देखा गया है। जो भी वहां समर्पित होकर के जाता है गुरु के चरणों में, गुरु उसका निर्माण करते हैं। जैसे अभी कहा गया था कि जैसे कुंभकार घरों का निर्माण करता है मिट्टी से, वैसे ही शिष्य का निर्माण होता है। शिष्य को सिंधु से बिंदु तक की यात्रा करा दी जाती है एकमात्र समर्पण का। गुरु उसे बनाता है, बहुत सुंदर रास्ते ढंग से बनाता है, निर्माण करता, उसके विकास की ध्यान रखता, उन्नति का ध्यान रखता है। इसलिए गुरु ब्रह्मा है। और बने हुए के लिए कहीं कोई चोटना पहुंच जाए, कहीं किसी की बाधाएं, कोई दूर से आपत्तियां, कोई तूफान ऐसे न आ जाए, इन बाधाओं से कहीं बनाया होगा ये पात्र, कहीं टूट भूख को प्राप्त न हो जाए, इसलिए गुरु हाथ लगा करके उसकी सुरक्षा करते हैं, अनुशासन से उसे बांध के रखते हैं। मतलब गुरु विष्णु है, क्योंकि वो सुरक्षा करते हैं। और शिष्य के भीतर में अनादिकालीन कपाय और उसे आत्माओं के संस्कार बने रहते हैं। वे संस्कार कहीं उभर करके ऊपर ना आ जाए, वे दुष्प्रयत्न आदि कहीं कहीं कुचित कदाचित कहीं देखने में आती हैं, तो गुरु उन्हें प्राश्चित आदि के माध्यम से उन अपराधों को दूर करने की कोशिश करता है, उसे निर्दोष बनाता है, उन दूसरे प्रवृत्तियों का संहार कर देता है। ये गुरु का कर्तव्य, इसलिए गुरु शंकर भी है। इस तरह गुरु का स्थान अपने आप में बहुत बड़ा है। गुरु ईश्वर के कम नहीं है, लेकिन गुरु को देखने की दृष्टि होनी चाहिए। जो अहंकार में डूब करके मैं ही स्वयं गुरु हूं, अपना आत्मा ही हमारा गुरु है, उसे कभी गुरु दिखाई देता है। अहंकार की आंख से कभी गुरु नहीं दिखाई देता है। समर्पण की भावना से, शिष्यत्व की आंख से यदि हम किसी व्यक्ति को देखते हैं तो वहां गुरु अवश्य दिखाई देगा। लेकिन करें क्या, हमारी ये स्वार्थ, हमारी अहंकार की दूषित भावनाएं हमारी इन ज्ञान चक्षुओं के ऊपर इस तरह का आवरण डाल देते हैं, मोह का आवरण, के गुरु होते हुए भी हमें गुरुओं के दर्शन से वंचित कर देते हैं, हम उनसे दूर कर देते हैं, हटा देते हैं। ये सब क्या है? अपने भीतर में शिष्यत्व का बहुत बड़ा अभाव है। एक बार शिष्य बनना तो स्वीकार करिए, एक बार तो कोशिश करिए शिष्य बनने की, आपको गुरु मिलता है या नहीं। जो शिष्य बनता है उसे गुरु मिले बिना रहता नहीं है। एक बार महाराज जी ने एक घटना सुनाई थी, मुझे इस मौके पर याद आ गई। एक स्कूल में एक लड़के को ले जाकर के भर्ती किया गया और स्कूल में भर्ती कर देने के बाद वह लड़का क्लास में बैठने लगा, लेकिन उसका काम सुबह जैसे स्कूल आता तो अपने कक्षा शिक्षक के चरण स्पर्श करता था। और एक दिन नहीं, एक कई दिन तक चला। शिक्षक ने देखा कि ये तो जम नहीं रहा, समझ में नहीं आ रहा, लगता है कि इसे मालूम नहीं है अभी। इस पूरे स्कूल में रहने वाले विद्यार्थी और इसमें रहने वाले शिक्षक मेरे से परिचित हैं, वो जानते हैं मेरा कोई सम्मान नहीं करता, मेरे आचरण से परिचित हैं, मेरी प्रवृत्तियों से परिचित हैं, इसलिए मेरा कोई सम्मान नहीं करता। इस नया नया आया है छात्र, सिरे से जानकारी नहीं है, ये कर रहा है लेकिन अच्छा नहीं लग रहा। और ऐसा करते करते 15-20 दिन बीत गए, वह सुबह आता स्कूल और अपने कक्षा शिक्षक के चरण स्पर्श करता, क्योंकि उसने उन्हें गुरु की हैसियत से स्वीकार किया था कि मेरे शिक्षा गुरु हैं। अचानक एक दिन क्या होगा, शिक्षक महोदय अपने घर से निकले बाजार की ओर, और वह विद्यार्थी एक दिन बाजार से लौट करके अपने घर की ओर जा रहा था। दोनों का रास्ता एक ही था, रास्ता इतना बड़ा नहीं था कि एक वहां से निकल जाए और एक वहां से निकल जाए, रास्ता संकीर्ण था। यदि पार करते हैं तो एक दूसरे से मिले बिना कोई पार हो नहीं सकता। और आज तो शिक्षक महोदय ने जैसे ही देखा कि छात्र आ रहा है, तो आज तो
मौका है कह लेना चाहिए। और जैसे ही वो नजदीक आया तो शिक्षक ने उस लड़के का हाथ पकड़ा और कहा कि तुम्हें मालूम नहीं है, तुम मेरे रोज चरण स्पर्श करते हो। स्कूल का समूचा छात्र वर्ग और शिक्षक वर्ग जानता है मेरा कोई सम्मान नहीं करता, तुम्हें नहीं मालूम क्यों नहीं करता, क्योंकि मैं शराब पीता हूं। लेकिन आज मुझे 15 दिन हो गए, मैं बहुत बड़ी मुश्किल में पड़ गया। जिस दिन से तुमने चरण स्पर्श किए उस दिन से मुझे ऐसा लगा कि जिस दृष्टिकोण से मुझे स्वीकार किया जा रहा है, सम्मान दिया जा रहा है, मैं उसके योग्य नहीं हूं। आज 15 दिन हो गए मैं शराब नहीं पी पा रहा हूं। और उस दिन से वह शिक्षक व्यसनों से मुक्त हो गया, गुरु की श्रेणी में आ गया। शिष्य के लिए गुरु मिले और गुरु के लिए शिष्य मिल गया। ना मालूम शिष्य मिलने से गुरु का परिवर्तन हो जाए, ना मालूम के गुरु के मिलने से शिष्य में परिवर्तन आ जाए। कब किसका अहंकार, कब किसकी बुरी वासनाएं कब टूट जाए कहा नहीं जा सकता। गुरुओं का संपर्क इतना सुहावना और अच्छा होता है कि आदमी अपने चरमत विकास को प्राप्त कर लेता है, चरमोत्कर्ष को प्राप्त कर जाता है। गुरुओं के चरण का सानिध्य बड़ा ही उत्तम है। अभी कहा जा रहा था गुरुओं के चरण सानिध्य में आकर के हर व्यक्ति अपनी आत्मा का कल्याण कर लेता है। मैं थोड़ा सा फिर सुधार करना चाहता हूं इस वाक्य में कि गुरुओं के चरण सानिध्य में आने के बाद में भी हर व्यक्ति अपना कल्याण करे, ये कोई जरूरी नहीं है। आप बुरा मत मानिए, आपकी श्रद्धा को कहीं ठेस पहुंचती है तो मुझे क्षमा कर देना। मैं जो कह रहा हूं वो सत्य, कटु सत्य है। आपने देखा तो नहीं, सुना होगा, मैंने भी ऐसा सुना है कि पारस पत्थर के संपर्क में आने वाला लोहे का टुकड़ा जब पारस पत्थर से स्पर्श को प्राप्त हो जाता है तो लोहे का टुकड़ा स्वर्णमय हो जाता है। होता है या नहीं होता, सब जानते हैं कि हो जाता है। पारस पत्थर का इतना प्रभाव कि उसके संपर्क में आने वाला लोहे का टुकड़ा स्वर्ण बन जाए, बहुमूल्य हो जाए, बड़ा आश्चर्य, क्योंकि इस सानिध्य का करिश्मा है, चमत्कार है, अतिशय है। लेकिन आप जानते हैं यदि कोई जंग लगा लोहे का टुकड़ा हो और यदि आप उसे पारस पत्थर के समीप में, क्या पारस पत्थर को भी लोहे के टुकड़े पर रख दो आप, तो क्या लोहे का टुकड़ा स्वर्ण बनता है? बनता है क्या? आवाज क्यों नहीं आ रही? नहीं बनता। सब दबी दबी आवाज में बोल रहे हैं, लग रहा है कि यहां कोई जंग खाए लोहे के टुकड़े। इन वर्षायोग के दौरान यदि हमें साधुओं का समागम और संपर्क मिला है, इनके सानिध्य में आने पर यदि हम अपने आप को एक लोहे का टुकड़ा समझ करके यहां आए हैं कि हमारा इतना विकास हो जाएगा कि स्वर्ण की कांति को हम प्राप्त हो जाएं, तो ध्यान रखना अपने लोहे के टुकड़े पर लगी हुई कसायों की जंग, विषय वासनाओं की जंग, ईर्ष्या और अहंकार की जंग यदि लगी है तो उसे मिटा करके आना, अन्यथा इन तीन काल में भी आपका लोहे का टुकड़ा सोने का, और इसमें पारस पत्थर की कोई गलती कले नहीं कहना चतुर्मास के बाद के महाराज जी आपका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। कैसे? यदि उसके ऊपर कोई आवरण होगा तो वो कुछ नहीं कर सकते। गुरु तो यहां उस आवरण को हटाने की शिक्षा देते, उपदेश देते हैं कि ये आवरण हटे, और आवरण हटे तो काम हो जाए। काम होने में देर नहीं लगती है, पर इस काम को करने के लिए ही यहां पर ये आचार्य गुरुवर आज के दिन उनका स्मरण किया जा रहा है, पूज्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज का, जिनकी अनुकंपा से हम सब लोग आप सबके बीच में आए। लगता है उन्होंने इसी भावना से भेजा होगा कि सात चातुर्मास छह चातुर्मास पहले हो चुके हैं। हो सकता है कुछ इस तरह के लोहे खंड जो जन्म लगे होंगे वो रह गए होंगे, वो स्वर्ण मुंडन पाए होंगे और वो स्वर्ण बन जाए, इसलिए उन्हें एक बार फिर मौका दिया है कि यहां के लोहे खंड एक बार मौका पाकर के फिर कोशिश करें और स्वर्ण बने। हमारा यही प्रयास होना चाहिए, प्रत्येक व्यक्ति का प्रयास होना चाहिए कि हम अपनी आत्मा को विषय कसायों से इस तरह हटा करके रखें। यहां मैं देखता हूं, यहां से मतलब इस समूचे प्राणी जगत में अपनी व्यक्ति की अपनी अपनी महत्वाकांक्षाओं की वजह से व्यक्ति कसाय से आधारभूत हो जाता है। कभी किसी को किसी पर कसाय आती, कभी किसी को किसी पर कसाय आती है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कसाय कैसी है। जहां निर्गंध तो वितराग साधु बैठा हो वहां पर कोई कसाय हो? अरे आप जानते हैं कि निर्गंध तो साधु जंगल में बैठे रहते, हरण आकर के उनके शरीर से खाक खोजा के चले जाते हैं, सर्पों सिंह और गाय एक साथ बैठकर के पानी पी लेते हैं, सर्पों मोला एक साथ बैठकर के मित्रता के भाव से जी लेते हैं, अपना बैर भूल जाते हैं, और यहां पर हम साथ साथ वितराग साधुओं को पाने के बाद में अपनी कसायों को विसर्जित नहीं कर सके, तो हमारा इससे बड़ा कोई दुर्भाग्य नहीं होगा। हम चाहेंगे अपने इस दुर्भाग्य को दूर करें और अपने सौभाग्य के सूर्य का उदय करें कि इनके सानंद में आने के बाद यदि किसी ने हमसे कुछ नहीं कहा, हो सकता है किसी ना किसी की कहीं गलती हो सकती है, लेकिन उस पर ध्यान ना देकर यदि इस भावना से हम आते हैं यहां पर कि हमें कुछ ना कुछ आत्मकल्याण के सूत्र मिलना चाहिए इन गुरुओं के पास, तो अवश्य ही हमारा कल्याण के बिना रहेगा नहीं। वैसे गुरु लोग कई बार डांट देते हैं, ऐसा देखा जाता है, शिष्यों को तो डांटा ही जाता है, यदि डांटा ना जाए तो समस्या खड़ी हो जाए। कहते हैं ना कि डांट नहीं लगा तो सिर पर बैठते हैं। गुरु और आंवला, आंवला जानते ना आप लोग, गुरु और आंवला के गुण धर्म एक समान हुआ करते हैं। जब आप आंवला खाते हैं तो खाते वक्त कैसा लगता है? कसायला, ऐंट जाती दिखाई देती, उसमें कसायला लगता है अच्छा। और उसके बाद में जब एक गिलास आप ठंडा पानी पीते उसके ऊपर से, तो कैसा लगता है वो पानी? ऐसा क्यों होता है? कसायली वस्तु खाई और पानी पिया तो मीठा स्वाद आ गया, इतना परिवर्तन हो गया इतनी देर में। गुरुओं के वचन भी ऐसे ही हुआ करते हैं, क्योंकि वो सत्य को लिए हुए होते हैं, सुधार की दृष्टि से हुआ करते हैं। वे जब कहे जाते हैं तब उस समय हमें कड़वे लगते हैं, कटुक लगते हैं, अच्छे नहीं लगते हैं, ऐसा लगता है कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है, ठीक नहीं हो रहा है। लेकिन कालांतर में उनके भी वचन आंवले की तरह जब हम पचाते हैं उन वचनों को, तो मीठा मीठा स्वाद आने लगता है। ये गुरु के वचन और आंवले के गुण एक समान हुआ करते हैं, कालांतर में बहुत अच्छे और मीठे स्वादिष्ट लगते हैं। इसलिए शिष्य और शिष्य में डांट की आवश्यकता हुआ करती है। एक बार, दो मिनट में मैं अपनी बात पूरी कर दूं, एक बार की बात है, आचार्य के सानिध्य में रात्रि का समय था। आप जानते हैं कि सामायिक के उपरांत सभी भव्यात्माएं उनकी सेवा करने के भाव से पहुंच जाते हैं कि थोड़ी सी भैया व्रत करेंगे। ब्रह्मचारी वर्ग भी उसी समय पहुंचा उनके रूम में, लेकिन आप ये भी जानते हैं उनके रूम में कोई बल्ब नहीं जलता, अंधेरा रहता है। एक ब्रह्मचारी ने सीसी खोली तेल की कि थोड़ा सा तेल लगा दें पैर में, खोल के रखी थी कि दूसरे ब्रह्मचारी का पैर लगा और सीसी उलट गई तेल। महाराज कुछ नहीं बोले, बोलेंगे क्या, रात में तो मौन है, कुछ बोल भी नहीं सकते। सुबह हुआ और जैसे सभी शिष्य भक्ति के लिए पहुंचे, गुरु भक्ति को भक्ति करने के उपरांत उनके मुख से एक सूत्र निकला, शिष्य और शिष्य में डांट की आवश्यकता हुआ करती है। यदि शिष्य में डांट होता तो तेल नहीं गिरता, और शिष्य में यदि डांट लगी होती तो शिष्य कभी उस श्रृंखल तो गुरुओं की डांट को आप बुरा मत मानना, आपके संरक्षण के लिए है। आपके अंदर जो भी दिया जाएगा वो सुरक्षित रहे, इस भावना से ही यहां पर जो भी कहा जाता है, कड़वा भी कटुक भी हो सकता है, उसे बुरा नहीं मानेंगे। मैं भी अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूं कि मुझे भी इस तरह के गुरु मिले कि जिन्होंने संस्कारित करके मुझे इतना अच्छा बना दिया कि आज मैं अपनी आत्म कल्याण के मार्ग पर चलने में समर्थ हो सका। अन्यथा मेरा क्या होता कोई नहीं जानता, किसका क्या होगा, आप सब भी नहीं जानते कि आपका क्या होगा। ये सानत बड़ी दुर्लभता से मिलते हैं। आज के इस गुरु पूर्णिमा के दिन हम गुरुओं का स्मरण करें। और दक्षिणा की बात अभी कही गई थी, किसी महाशय ने अभी कहा था डॉक्टर साहब ने कि दक्षिणा देते हैं आप तरह तरह की, लेकिन मैं नहीं मांगूंगा आपसे दक्षिणा, घबराना नहीं। मैं कोई गुरु द्रोणा नहीं हूं कि आपका अंगूठा मांग लूं, लेकिन ध्यान रखना 4 महीने के बाद जरूर मैं आपसे दक्षिणा मांगूंगा। और मैं उस दिन देखूंगा आपकी दक्षिणा, जिस दिन एपीसी परिवर्तन होगा, कि आप संयम के उस दिवस पर आप इन गुरुओं को क्या दक्षिणा प्रदान करते हैं। वो क्षण आज नहीं, इन 4 माह के बाद आएगा, उसे हम इंतजार करेंगे। और आप अपने आप को इतना समर्थ बना लें 4 महीने में कि हम कुछ ना कुछ इन गुरुओं के चरणों में समर्पित कर सकें और संकल्प ले सकें। आज के दिन भगवान महावीर स्वामी की वह देशना प्रसारित हुई जिसके फलस्वरूप आज हम सब सानंद यहां जी रहे हैं, धर्म का श्रवण कर रहे हैं। उनकी देशना इन 4 महीने में प्रारंभ होगी और उन्हीं के ही शब्द यहां सुनाए जाएंगे जो धर्म से भरे हुए हम सबका कल्याण करेंगे। इन्हीं भावनाओं के साथ कि उनकी देशना हम सबका कल्याण करे, गुरुओं का सानिध्य मिल करके हम अपने आत्मा का कल्याण कर सकें, इन्हीं भावना के साथ गुरुदेव को मैं प्रणाम करते हुए वाणी को विराम देता हूँ। आचार्य गुरुश्री विद्यासागर जी महाराज जी।
दूजीवन मंगलम, जिन धर्म मंगलम, अरिहंत उत्तमा सिद्ध प्रभुतिमा। साधु जीवन उत्तमा, जिन धर्म उत्तमा, अरिहंत शरणा सिद्ध प्रभु शरणा। साधु जीवन शरणा, जिन धर्म शरणा, यही 4 शरणा भव दुख हरना, शिव सुख करना, भव्य जीव तरना। मन मति को मम न मन हो, ममे मति सन मति हो, सुर नर पशु गति सब मिटे, गति पंचम गति हो। तरणी विद्या सादर गुरु, तारो मुझे ऋषि, करुणा कर करुणा करो, करते दो आसी। पंच परमेष्टी भगवान की, संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, मुनि श्री क्षमा सागर जी महाराज की जय। आज बड़ी खुशी की बात है कि एक साथ 2 पर्व आए हैं, अर्थात तिथि 2 है, पर्व 1 है। पहला आता है गुरु पूर्णिमा, उसके बाद आएगा वीर शासन जयंती। चूंकि 1500 एक साथ इकट्ठी एक होने के कारण से, तो गुरु का वो अर्थ होता है भू यानी अंधकार, और रू यानी जो रुंधन करने वाला होता है, अर्थात जो दूर करने वाला होता है। तो जो अंधकार को दूर करता है वह कहलाता है गुरु, और पूर्णिमा अर्थात पूर्ण यानी जिसके लिए भी गुरु की प्राप्ति हो जाती है, उसका जीवन पूर्णता की ओर अग्रसर होकर के पूर्ण रूप में परिवर्तित हो जाता है। तो आज का दिवस है अर्थ से परमार्थ की ओर यात्रा कराने वाला, देह से विदेह की ओर गमन कराने वाला, और मोहंधकार से निकाल करके सम्यक रूपी सूर्य को उदय करने वाला आज का यह महान पर्व आया है। तो गुरु का अर्थ सामान्य से होता है पथ प्रदर्शक, या इसको क्या कहते मार्गदर्शक, यानी जो मार्गदर्शन देता है, स्वयं तो उस मार्ग पर चलता है और दूसरों को भी चलाता है। पहले वह अपने व्यवहारिक जीवन में उन क्रियाओं को आचरण में लाता है, फिर दूसरों को उपदेश देता है। तो इस गुरु के ही दो कार्य होती हैं, यह जगाता भी है और सुलाता ही, अर्थात जो व्यक्ति सोया है उसको जगाने का कार्य करते हैं, और जो व्यक्ति सोया है उसके लिए जगाते हैं, और जो सोया जगा है उसके लिए सुलाने का भी कार्य करते हैं। जैसे कि लालिमा एक होती है लेकिन उसके कार्य दो होते हैं। आचार्य स्वयं पद्यानुवाद में कहा है, प्रभात में भी लाली है संध्या में भी लाली है, एक जगाती एक सुलाती कितने अंतर वाली है। अर्थात एक जो प्रभात काल की लालिमा होती है वह सोते हुए व्यक्ति को जगाती है, और जो संध्या काल की लालिमा होती है वह जागे हुए व्यक्ति को सुलाने का कार्य करती है। तो इसी प्रकार से गुरुदेव भी होते हैं जो कि जागे हुए व्यक्ति को इस तरह सुलाएंगे। अब आप लोग कह सकते हैं कि किस तरह से जो सुलाने का कार्य करते हैं, जगाने का कार्य तो बहुत सरल है, ये करना तो इनके लिए ठीक है, लेकिन इस तरह से सुलाते हैं। आप इसको छोटे दृष्टांत के माध्यम से मैं प्रस्तुत करता हूँ। गुरुदेव के उपदेश चल रहे थे, जिस तरह से यहाँ सभा लगी हुई है उसी तरह से वहां भी सभा तैयार थी सभी लोग। तो गुरुदेव ने सभी तरह का उपदेश दे दिया उनके लिए, यानी चारों अनियोगों का, वर्तमान योग, करणान योग, चरणान योग और दिव्यान योग का, आगम, अध्यंत, अध्यात्म, न्याय, व्याकरण आदि सभी तरह का उपदेश समाप्त हो गया। अब सभी श्रोता सुन करके उठ करके जाने लगे। उसी सभा में एक पिंजड़े में तोता भी बैठा था, वो भी सभी तरह का सुन लिया उसने उपदेश, लेकिन उसके लिए कुछ भी समझ में नहीं आया। तो सभी लोग तो जाने लगे, वह तोता भी अपनी मूक भाषा में कहता है, हे गुरुदेव, आपने सभी इन भव्य श्रोताओं के लिए तो उपदेश दे दिया, इन्होंने तो समझ करके तो अपनी अपनी राय चलते बने, लेकिन जो कुछ कहा आपने मेरे लिए एक शब्द भी समझ में नहीं आया, अर्थात मैं उसकी भाषा नहीं समझ सका। तो गुरुदेव उसके संप्रेषण के लिए समझ गए, उन्होंने कहा ठीक है तुम्हारे लिए भी थोड़ा उपदेश देते हैं। तो उन्होंने कहा तुम्हारे लिए आज मात्र इतना ही उपदेश है कि आज तुम सो जाओ। अर्थात वो बंद पिंजड़े में तड़प रहा था, वह बार बार भावना इच्छा इस तरह की कर रहा था कि कब इस कैद के पिंजड़े से मैं बाहर हो जाऊं, मैं स्वतंत्रता स्वतंत्र आकाश में किस तरह से विचरण करूं। तो इस तरह से उन्होंने कहा और गुरुदेव का वह उपदेश सुन करके सो गया। भीतर से तो वह जाग रहा था, इस इच्छा से वह जाग रहा था कि कब उसका मालिक आएगा और वह पिंजड़ा खोलेगा और मैं पंखों के माध्यम से आकाश में हो जाऊंगा। तो जैसे ही उसका मालिक आता है वो देखता है, अरे आज तो तोता को पंख पकड़े इसके प्राण उड़ गए हैं, अर्थात ये तो मरण को प्राप्त हो गया है, लेकिन वो बनावटी सोया था, भीतर से नहीं सोया था। तो जैसे ही वह पिंजरा खोलता है और वो इसी ताक में बैठा था तोता, पिंजरा खोला देख करके वह भी मुक्त हो गया। इसीलिए गुरुदेव भी कहते हैं, आचार्य कुंद कुंद जी कहती है, जो बहारे सो बदी सो निच्छय जग गदी, जो निच्छय सो बदी सो बहारे जग गदी। अर्थात जो व्यवहार में सोता है वह निश्चय में जागता है, और जो निश्चय में सोता है वह व्यवहार में जागता है। तो व्यवहारिक क्रियाएं हैं जो कि विवृत्ति अपनी अशुभ क्रियाएं हैं जो कोई अशुभोपयोग में लीन व्यक्ति है उसके लिए आचार्य देव कह रहे हैं कि तुम सो जाओ अर्थात धर्म ध्यान में लीन हो जाओ। लेकिन एक व्यक्ति आगे का शुभोपयोग वाला है उसी में वह रंग रहा है तो उसके लिए भी आचार्य उपदेश देते हैं कि तुम शुभोपयोग से शुद्धोपयोग की ओर बढ़ो इसी को मात्र पर्याप्त ध्येय मत समझ लो इसके आगे भी पढ़ो। तो ये हो गई आपकी जागने और सोने की बात। तो ये गुरुदेव का कार्य होता है। अब जो शिष्य है तो जो शिष्य पहुंचता है तो वह गुरुदेव के सामने कोई भी अपना निवेदन प्रस्तुत नहीं करता अर्थात वह तो मौन रूप से समर्पण की उसकी भाषा होती है कि जो भी आपको बनाना हो मेरे लिए बना दीजिए मेरी कोई भी इच्छा नहीं है। जिस प्रकार से मिट्टी होती है तो मिट्टी कुमार के हाथों में पहुंचती है वह कुछ भी नहीं कहती है कि मेरे लिए घड़ा बनाइए या मेरे लिए सकोरा बनाइए या ढक्कन आदि या सुराही जो कुछ तुम्हारी इच्छा हो उसको आप बना दीजिए। स्वर्ण भी होता है वह स्वर्ण भी स्वर्णकार के हाथों में पहुंचता है तो वह भी अपना कोई शर्त नहीं रखता है कि मेरे लिए कंगन बनाइए मुकुट बनाइए या हार बनाइए जो भी तुम्हारी इच्छा है तुम्हारी इच्छा के ऊपर डिपेंड हूँ आप अपने अनुरूप ही बना दीजिए। एक पत्थर अनगढ़ पत्थर भी होता है जो कि शिल्पी के हाथों पहुंच जाता है तो वह शिल्पी भी उस पत्थर को तराश तराश करके उसको मूर्ति का रूप दे देता है। इसी प्रकार से गुरुदेव देव होते हैं जो कि अनगढ़ पाताल के लिए अर्थात जिस शिष्य में कोई भी योग्यता क्षमता नहीं होती है वो उसकी योग्यता क्षमता का आकलन करके उसको उसके रूप बना देते हैं अर्थात वह कंकर के लिए भी शंकर का रूप प्रदान कर देते हैं। इसीलिए कहा गया है गुरु कुमार शिष्य कुंभ है गड़ गड़ काड़े कोट अंदर हाथ पसार के बार मारे चोट अर्थात अंदर से तो उनकी इस तरह की भावना रहती है कि किसी भी प्रकार से इसकी क्षति ना हो अर्थात जो इसमें दोष है अवगुण है उसको ही वह निकालने का प्रयत्न करते हैं अच्छी तरह से जिस तरह से उसमें दोष आदि का अभाव हो जाए। और भी अभी जैसा कि कहा गया था किसी ने गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए बलिहारी गुरु आपकी गोविंद दियो बताए। तो सबसे अपने अंतिम पदेश को थोड़ा ध्यान से समझना बलिहारी गुरु आपको गोविंद दियो बताए तो आचार्य जी इसको कहते हैं कि गोविंद दियो बताए नहीं गोविंद दियो बनाए अर्थात आप शिष्य को भी गोविंद अर्थात भगवान बना देते हैं। आपका ये कार्य है क्योंकि जिस तरह के आप हैं उसी के अनुरूप उस शिष्य को भी बना देते हैं। जिस प्रकार से नमोकार मंत्र होता है उसमें आप पहले किसको स्मरण करते हैं नमो अरिहंताड़म लेकिन बड़े कौन है सिद्ध भगवान है सिद्ध भगवान को बाद में स्मरण किया जाता है क्योंकि अपन सभी स्वार्थी हैं कुछ ना कुछ उनसे स्वार्थ सत्ता है इसलिए उनके लिए पहले स्मरण किया जाता है क्योंकि अनंत भगवान ही सिद्ध भगवान की पहचान बताते हैं कि सिद्ध भगवान कैसे हैं कर्मों से रहते हैं वह सिद्धावस्था में शाश्वत सुख का उपभोग कर रहे हैं तो उन अनंत भगवान से सिद्ध भगवान का ज्ञान हमारे लिए होता है। इसी प्रकार से यहाँ भी कहा जा रहा है गुरु सामने खड़े हैं उन गुरु के माध्यम से ही गोविंद अर्थात भगवान की पहचान होती है। तो इसीलिए कवि ने कहा है कि पहले गुरु के चरण पखारो अर्थात पहले गुरु पूजनीय है इसके बाद भगवान या गोविंद इसके आगे। और भी शिष्य कहता है अपने लिए क्या कहता मैं विष की बेल री गुरु मृत की खान शीश दिए यदि गुरु मिले तो भी सस्ता जान अर्थात गुरु इतनी सुलभ नहीं है कि ये जगह जगह पर मिल जाए। आपके लिए दूसरे जो गुरु कहलाते हैं वह तो पग पग पर मिल जाएंगे जहां भी आप जाएंगे, जिस चौराहे पर, जिस रास्ते पर जाएंगे, सभी लोग अपने लिए कहेंगे मैं गुरु हूँ, मैं गुरु हूँ। लेकिन सदगुरु बड़ी दुर्लभता से प्राप्त होंगे, उनकी खोजने के लिए बहुत प्रयत्न, बहुत पुरुषार्थ करने पड़ेंगे, तब वह प्राप्ति हो सकेंगे। और आगे कहा गया है गुरु के लिए कि सब धरती कागज करूं लेकिन सब बने सप्त समुंदर साई करूं तो भी गुरु गुण कहे न जाए। अर्थात समस्त धरती को अगर कागज की उपमा दे दी जाए, उस पर गुरु के बखान लिखी जाए, गुरु का गुणगान किया जाए, तभी भी वह पूर्ण नहीं हो सकते हैं। और जितने भी वन जंगल हैं, उन सभी की लेखनी कलम बना दी जाए, और जितने भी समुद्र का पानी है उसकी स्याही बना दी जाए, फिर भी गुरु के गुण कहे नहीं जा सकते, उनका वर्णन नहीं किया जा सकता। ऐसा कहा कोटि जीवित यानी करोड़ों वर्षों तक कोटि कोटि जिह्वाओं के द्वारा भी अगर गुरु का वर्णन किया जाए, तभी भी वह पूर्ण नहीं हो सकता है। जैसे कि लोक में भी कहा जाता है गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर् देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। अर्थात गुरु को ही ब्रह्मा की उपमा दी गई है। ब्रह्मा यानी आत्मस्थ हो, जो आत्मा में लीन हो, वह जो ब्रह्म में आचरण करता हो वह ब्रह्मा कहलाता है। विष्णु अर्थात जिसका केवल ज्ञान तीनों लोकों में व्याप्त हो, यानी तीनों लोकों को वह समस्त चराचर वस्तुओं को जानता है, वह कहलाता है विष्णु। और गुरुदेवो महेश्वरा यानी महाईश्वर है, ये भगवान है, यही शंकर है, और साक्षात ही गुरु परम ब्रह्म है। इसलिए मैं गुरुदेव को भी नमस्कार करता हूँ। और आगे भी कहते हैं गुरु वह पांतु नो नित्यम ज्ञान दर्शन नायका चारित्रण गंभीरा मोक्ष मार्गोपदेश कहा। अर्थात ये जो गुरु होते हैं ये ज्ञान दर्शन के स्वामी होते हैं, चारित्र के समुद्र रूप होते हैं, गंभीर होते हैं, और मोक्ष मार्ग का उपदेश देने वाले होते हैं। अज्ञान त्रिमरांधा नाम ज्ञानांजन सलाकया चक्षुरुन्मीलतम तस्मै श्री गुरुवे नमः। अर्थात हम सभी संसारी प्राणी जो मोहांधकार में डूबे हुए हैं, जिनके चक्षु बंद हैं, वह इन चक्षुओं के लिए ज्ञान रूपी अंजन की सलाकाओं के द्वारा खोलते हैं, और सम्यक रूपी सूर्य के प्रकाश से ये प्रकाशित करते हैं। ये कार्य होता है गुरु का। जैसा कि कहा है गुरु बिन ज्ञान नहीं, अर्थात गुरु के बिना ज्ञान नहीं हो सकता है। जो लोग सेल्फ स्टडी करते हैं, मात्र शास्त्रीय ज्ञान तो हो सकता है लेकिन प्रैक्टिकल तो गुरु के माध्यम से ही होगा, अनुभव तो गुरु के माध्यम से ही प्राप्त हो सकेगा। मात्र तोता रटंत तो कोई भी व्यक्ति हो सकता है, लेकिन अगर अनुभव प्राप्त करना है तो सदगुरुदेव की ही शरण में पहुंचना पड़ेगा। सदगुरुदेव कोई भी